इस्लाम का पहला दर्जा जिहाद के नाम पे, यानी अगर आप जिहाद की बात करते हैं तो सबसे पहला जिसको आप कहते हैं ना क्लोजेस्ट, जस्ट लाइक मेरे इस तरह मेरे हाथ के करीब, वो जिहाद बिन नफ्स है। दैट इज द फर्स्ट मोस्ट। ठीक है, और आगे लिखिए, सबसे पहला करीबी जिहाद कौन सा है जिसको आप कहते हैं जिहाद बिन नफ्स, और सबसे आला तरीन दर्जा किताल है। क्योंकि सारी आयत के अंदर अगर लफ्ज किताल ना समझेंगे ना, तो बुनियाद मरसूस में पढ़कर बाकी बातें भी नहीं समझ आएंगी। अल्लाह सुबहाना ताला ने दुनिया में इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया, उसको हक पहुंचता है, ही हैज दिस राइट। जैसे हम अपने बच्चों पे अपना हक जतलाते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, मैंने वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये है वो है, तो ये बातें ही हैं। हमारा क्या हक है 9 माह पेट में रखा और अपनी मर्जी से फिर भी नहीं खिलाया? अगर बच्चा पेट में स्टिल हो जाए और स्टिल बॉर्न बेबी पैदा हो जाए, आप और मैं बिल्कुल उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब एक माँ का हक कितना है कि वो तुम्हारी जन्नत है, वो तुम्हारी जन्नत है, वो तुम्हारी जन्नत है, और बाप का हक है अंतवा मालुका लिया अभी का। एक शख्स ने आकर अल्लाह के नबी से कहा, मेरा बाप मुझसे बड़ा ही तकाजा करता है, मेरा बाप मुझसे पैसा मांगता है, या मेरी चीज होती है बाप मुझे पूछे बगैर ले लेता है, तो क्या मेरा बाप ठीक करता है? तो आपने फरमाया, अंता तू व मालुका, और तेरा माल ली वालदिक, तेरे बाप का। यस ही कैन डू इट। बाप एक बच्चे को जाकर किसी दुनिया के बाजार में बेच आए ना, गुलाम बना दे, तो उसको हक है। और माओ के हक तो हम खुद ही लोगों को सुना सुना के खपाते रहते हैं ना कि माँ का हक, और जब तक माएँ दूध पिलाती थी तब तक दूध भी ना बख्शने की बातें थी ना। तो जरा सोचिए कि जिस रब ने माँ बाप दिए चले, उसका हक कितना होगा? तो लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन आयतों पे परेशान होते हैं कि ये अल्लाह का टेस्ट क्या है। और माजरत के साथ जिस माहौल में आज हमारी औलादें पल रही हैं, और ये आयत जरा आंखों पे रखिए, मैं आपको सच बताऊं, इसको छुपा दें, हाय हाय अल्लाह, ये आयत तो लोग कभी दुनिया में पेश नहीं कर सकते। यूएनओ में कौन जाकर ये आयत पढ़े? देखो देखो, तुम्हारा रब जंग को पसंद करता, लड़ने वालों को पसंद करता। यही आयतें जिस पे लोग आपको टेररिस्ट कहते हैं, यही आयतों में से वो खुशबू आती है जिसको कहते हैं मुसलमान खूनी है और दरिंदे हैं और खून के प्यासे हैं। और ये वो आयतें जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया। तो मैं क्यों आपको ये पढ़ा दूं? आप तो शर्मिंदा होंगे, शायद को मत बाहर पेश कीजिएगा। आज के दौर का गया गुजरा दौर हमारे ईमान और हमारे जज्बे जिहाद के लफ्ज़ जिहाद बोलते हुए आप डरते हैं। आपको मस्जिदों में ये लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं है, आपका खुतबा एडिट होता है, टाइपिंग होती है, क्योंकि सर्च होते हैं लोग आपके मेंबर से, जो बातें जाती हैं आगे वो आपका ये लफ्ज़ सुने, मस्जिदों वाले स्पीकर को बताते हैं कि ये लफ्ज़ नहीं आपने बोलना। अच्छा बोले या बुरा बोले, बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये सर्च में आ जाएगा, और जिसका आ गया वो फंस गया, वो बोले क्या? तो समझिएगा पहले, जिस रब ने आपको मुझे पैदा किया, उसको हक है कि वो हमसे कुछ भी चाहे, ठीक है ना? अब ये आयत क्या कह रही है? सिर्फ इस आयत को देखे, कोई तर्जमा ना देखे, सिर्फ देखे, इन्ना अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ्फा। ये क्या बात है? अगर मैं इस आयत को सिर्फ इतना पढ़ूं, और देखिए ये टूटी फूटी तफसीरें करते हैं लोग, जब किसी भी चीज का हम असल रंग नहीं देखते ना, तो हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आप इस आयत पे यहां रुक जाइए, इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलून, बस इतने पे रुक जाए। अल्लाह को लड़ने भिड़ने वाले पसंद है, आपको बाकी से को छुपा लें हाथ से, क्या बनती आयत? नऊज़ बिल्ला, अल्लाह मुझे किसी भी गलत लफ्ज बोलने से बचाए, लेकिन लोग आपके अल्लाह के बारे में कहेंगे, देखो तुम्हारा अल्लाह लड़ने वालों को पसंद करता है। एक शख्स ने, आपको पता है मैं नाम नहीं लेती, अगर आपको पता है तो आप भी ना लीजिएगा, एक मुल्क में मुकदमा किया उन्होंने, मुसलमान मजहब पे मुकदमा किया कि ये खूनी मजहब है, घसीट के लेकर आए अदलिया में इस्लाम को, मुसलमानों को नहीं, मुसलमान तो बेचारे वैसे ही बड़े दब्बे में, वो इस्लाम लफ्ज, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो कह लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकदमा है, और अगर अल्लाह सामने मौजूद होता, क्यों अल्लाह को पकड़ नहीं सकते? उन्होंने लफ्ज इस्लाम के ऊपर मुकदमा किया है कि ये खूनी मजहब है, खूनी मजहब इस्लाम इधर आ, और उसने ये साबित किया है कि ये लड़ाता है, अनटॉलरेंट है, इस्लाम किसी को पसंद नहीं करता। कितनी जुबानें खुलती हैं हमारी, और अगर ये ना समझे तो आयत 9 नहीं समझेंगे आप। देखिए मिसाल समझिए, हल्की हल्की बात करते, ज्यादा ना घबराएं। ये अमेरिका है ना, यूएसए, आपके साथ कनाडा और शायद से साउथ अमेरिका होगा क्लोजेस्ट, इसी तरह और इधर वो भी आइसलैंड भी है ना मुल्क, अमेरिका के साथ कनाडा, आप पाकिस्तान, इंडिया, 10-100 मुल्क बोलिए, जो मर्जी बोलिए, ब्रुनाई है, कवैत है, कतर है, सऊदीया है, क्या हर मुल्क के ऊपर उसका झंडा होता होता है ना? पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान के कोने कोने पे लगेगा, पाकिस्तान का झंडा उस बॉर्डर पे जिसके दूसरी तरफ इंडिया, उधर लग सकता नहीं? लगेगा ना। इंडिया का झंडा वाहगा बॉर्डर के इस तरफ इंडियन झंडा लग सकता है कि वो इधर लग सकता, और पाकिस्तानी झंडा इधर लग सकता है कि उधर लग सकता? दैट मीन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुल्क का भी एक बॉर्डर होता है, उसकी एक हद होती है, उसका एक फ्लैग होता है, और फिर उसके बाद इन्हीं मुल्कों के साथ बात करते जाए तो क्या इनका लॉ होता होता है ना? कोई माने ना माने, लॉ तो हमारे मुल्कों में भी है, हर मुल्क की बाउंड्रीज होती है ना, और जिस मुल्क में लोग रहते हैं उसको उस मुल्क की बातें मानने का जिम्मा है कि नहीं? बस इसी से बात समझ आ गई है। ये अमेरिका है, साथ एक कनाडा है, फिर दूसरे मुल्क, 10-20 मुल्कों के नाम लिए, इसी तस्वीर को बड़ा कर लीजिए। कुरान में 20 बार ये आयत है, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध, सब कुछ अल्लाह का है जो कि जमीन व आसमान में है, ऐसे ही है ना? तो जब सब कुछ जमीन व आसमान में जो है वो अल्लाह का है, तो आप अब इमेजिन कीजिए ये पूरी दुनिया एक मुल्क है, तो उस मुल्क पे किसका झंडा होना चाहिए? अल्लाह का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सऊदी हुकूमत का जो झंडा है ना, वो रिप्रेजेंट करता है मुसलमानों के कलमे को, ग्रीन कलर और ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। अगर वही असूल जो अभी आपने समझा, जो आपने बात की है, अगर उसको ही मैं यहां इंप्लीमेंट कर दूं, तो उसी असूल के तहत दुनिया में छोटे छोटे मुल्कों में उनके झंडे होने चाहिए, उनके कानून होने चाहिए, उनकी कैबिनेट, उनके रूल्स, उनके सजाएं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, बॉर्डर खुला कि नहीं खुला, मास्क फर्ज हैं कि नहीं, बच्चों के स्कूल खुलने हैं कि नहीं, आइसोलेशन होगी कि नहीं, हर मुल्क के अपने रूल्स हैं ना, ये रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है, ये ब्लू जोन है, इसी पिक्चर को बड़ा कर लीजिए, अल्लाह हैज द राइट कि पूरी दुनिया पे उसका कानून चले, बिकॉज ही इज अल्लाह। जब अल्लाह का हक है, तो असूलन आप एक अपने ना नोट्स में एक ग्लोब बनाइए, वर्ल्ड का लफ्ज है ना, दुनिया तो जमीन है, अर्थ है, अर्थ भी बनाइए, स्काइस बनाइए, कहीं कोने में वो निजामे शमसी बना लीजिए ना, सोलर सिस्टम होता है, सूरज चांद सितारे प्लूटो और जो ABCD, सभी को बचपन से ही माशाल्लाह हम पढ़ते आ रहे हैं किताब, ये सारा कुछ बनाकर और उसके ऊपर लिखिए अल्लाहस किंगडम, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शय्इन। हर रात पढ़ते हैं ये आयत, आज समझिए पूरी दुनिया में बादशाही अल्लाह की, और वहां मुल्क है, मलकियत नहीं, वो अब एक अलग खेल है, मैं नहीं छेड़ती कि तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क क्यों आया है, ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह मालिक कुल्ली शय्इन, वो सूरत कभी आपको पढ़ाई तबारक तो फिर बताऊंगी, लेकिन इतनी बात तो सबको पता है, बाय डिफॉल्ट वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये पूरी दुनिया अल्लाह की है, और जिस तरह किसी एक मुल्क में दूसरा हमला करे, कब्जा करना चाहे, उसका झंडा उतार कर अपना लगा दे, तो ये एक जुर्म है, इतनी बात सही है। सेम रूल को आप इधर ले आइए, बाय डिफॉल्ट पूरी दुनिया में अल्लाह का निजाम चलना था, अल्लाह का हुक्म, उसकी पसंद, उसकी मर्जी, यानी आप कह लें कि पूरे ग्लोब जो मैंने आपको दिए ना बनाने को, उसमें जगह जगह झंडे लगा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जमीनों में, आसमानों में, प्लूटो पे, सूरज में, चांद में, जहां भी इंसान है नहीं है, पूरी दुनिया में ये सब झंडे होते, असूल तो ये था, और जो अल्लाह कहता वो होता, और जो अल्लाह ना चाहता वो ना होता। अब आइए रियल पिक्चर पे, रियल में क्या हो रहा है, अल्लाह ने पूरी आजादी दी, आप सुर्ख और सफेद झंडा लगा लें, आप रेड एंड ब्लू एंड वाइट स्ट्रैप्स वाला झंडा लगा लें, आप पाम का पत्ता लगा लीजिए, कौन सा कनाडा का झंडा, आप यूके में जाइए कोई एक लगा लीजिए, आप स्वीडन में जाइए पूरा रेड झंडा लगा लीजिए, है ना? दैट इज अल्लाह टॉलरेंस, लिखें जब आप अल असमाल हुस्ना में असबूर पढ़ते हैं, अभी मैंने पढ़ाया पिछले चंद माह पहले और कुछ लोगों ने माशाल्लाह पूरी सीरीज ली, ये असबूर है कि जिसने नीले पीले झंडे बर्दाश्त किए हुए। अगर हम होते उसकी जगह, कहते हैं ना बजोरे कलम बजोरे जुबान और हाथ से पकड़कर सब झंडे उतार कर समंदर में फेंकते और सब जगह लगा देते सब झंडे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अब जब अल्लाह ने ऐसा नहीं किया तो फिर अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने लोगों को दुनिया में मौका दिया, अल्लाह ने लोगों को इस बात का मौका दिया कि तुम यू वॉन्ट टू बी इन माई पार्टी, यू वॉन्ट टू बी इन माई आर्मी। देखिए ना, हर मुल्क की एक फौज होती है ना, होती है ना, अमेरिकन फौज, कैनेडियन फौज, पाकिस्तानी आर्मी और इसी तरह इंडियन, और हर मुल्क की फौज होती है, छोटी हो बड़ी हो जैसी भी होती है। ये जो कल दायरे खींचे थे ना आपके नाम पे, वो जो अंदर का दायरा था ना, क्या नाम था उसका? वो अल्लाह की फौज है। आज इसको समझिए, मुजाहिदीन आर अल्लाह आर्मी। अब आर्मी का क्या काम होता है जी? बैठ के मुस्कुराती रहे, स्माइल दे, कोई आ रहा आने दे, कोई जा रहा जाने दे, इस सो के वी आर सो पोलाइट। कोई आता है, वही वहां का बॉर्डर कोई जरा सा मिसाल बनाते हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों से माजरत के साथ, दोनों हुकूमतों से हम माजरत लेते हैं क्योंकि हम बाहर बैठे हुए इस वक्त। अब एक इधर बैठा है मुजाहिद यानी आर्मी का बंदा और एक उधर, और दोनों एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं, खाना ऑफर कर रहे हैं, ड्रिंक्स दे रहे हैं, वो इधर से पकोड़े भेज रहा है, वो उधर से लाहौर की चना चाट भेज रहा है, और जिसका दिल करता है आए, जिसका दिल करता है जाए। और एक शख्स आता है और वो ला कर ना जल्दी से इंचिस टेप, तो जरा सा ना वो फीता जो है ना वो बॉर्डर को वाहका का इधर से ना सिर्फ एक गज टुकड़ा पाकिस्तान के हद में डाल लेता है इंडिया का, और ये देख रहा है इंडियन आर्मी का बंदा। समझ रहे हैं आप बात जो मैं कहना चाह रही हूँ? या फिर दूसरी तरफ ये है कि वो पाकिस्तानी वाले को भी देख लेते हैं, वो भी मुस्कुरा रहा है। इतने में इंडिया से कुछ लोग इंची स्टेप लेकर आते हैं और वो लाहौर वाली साइड में से 2 गज जमीन इंडिया की, वो बाउंड्री कहते हैं आज से बाउंड्री ही है, ये क्या करेंगे? स्माइल। और वो उसको इंडियन फिल्म लगा दे और वो उसको पाकिस्तानी ड्रामा लगा दे, तुम फिल्में देखो मैं ड्रामे देखता हूँ। ऐसी आर्मी को इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट रखेगी? बस ये है जवाब। आज यहां से उठने से पहले सजदा करिए इफ यू आर आर्मी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू। इन सारी चीजों को, गैरों के झंडों को या गैरों के कवानीन को हटाकर अल्लाह के कानून को अपनाने का नाम जिहाद है। अभी मुझे पता है आपके लिए बातें जज्ब करनी मुश्किल है, लेकिन ऐसे ऐसे जज्ब होंगे। यहां जिहाद फी सबीलिल्लाह का बुलंद तरीन मुकाम, बुलंद तरीन ईमान किताल है। किताल, जिहाद, जिहाद बिन नफ्स, इनमें फर्क क्या है? ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जिसमें आप खड़े हैं, सबसे अहम चीज क्या है भाई? फाउंडेशन को क्या करना है? हम उसमें को बैठे में फाउंडेशन में कुछ हो रहा है? आपके सबसे सबसे अहम क्या चीज थी इधर? क्लासरूम, ये कुर्सी, ये मेज और ये छत, ये एसी जो चल रहा है, ये स्क्रीन, ये प्रोजेक्टर, ये माइक साउंड सिस्टम है ना, आपके हिसाब से तो ये चीजें अहम थी। लेकिन अगर ये फाउंडेशन ना होती तो ये आप थर्ड फ्लोर पे बैठे होते? लिखिए, इस्लाम की जो फाउंडेशन है ना अंदर, जिसके ऊपर इस्लाम की इमारत खड़ी होती है, उसको जरा सा रिलेट कीजिए। किताल फी सबीलिल्लाह जो है ना, ये टॉप है, जिरवा, सिनाम, कई लफ्ज हैं, चोटी, चोटी लिख लें बस, पीक। जिहाद जो ना वो सबसे ऊपर है, लेकिन जो चीज फाउंडेशन में है ना वो सीरत किरदार है, जिसको जिहाद बिन नफ्स कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ अ मैन ऑफ रेवोल्यूशन। जब आप किसी भी चीज के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको पहले बुनियाद पक्की करनी पड़ती है। ये बिल्डिंग, ये हॉल, ये जो मैंने सारी चीजें गिनाई, ये होती अगर फाउंडेशन ना होती? नहीं होती ना। फाउंडेशन नजर नहीं आ रही तो आप दो लफ्ज लिखिए उर्दू के, अहम तरीन और बुलंद तरीन। अब ये एक अलग आपका तरीका है सोचने का। अपने नोट्स में लफ्ज लिखिए, इम्पॉर्टेंट वर्सेस ऊपर को क्या कहेंगे, टॉलेस्ट। एक होती है चीज अहम तरीन और एक होती है बुलंद तरीन। अहम तरीन इज फाउंडेशन और बुलंद तरीन इज रूफ। बात समझ गए? अब एक तस्वीर बनाइए घर की, ऐसे कमरा बनाइए जिसमें नीचे फाउंडेशन होगी और ऊपर छत होगी। ये जो नीचे फाउंडेशन है ना, ये इन लोग हैं, सीरते किरदार है, नबी की कामयाबी में अबू बकर से लेकर कमजोर से कमजोर ईमान वाला सहाबी था जिस पे इस्लाम की इमारत खड़ी हुई। अल्लाह के नबी की सारी मेहनतों का रुख, आपकी सारी कोशिशें, आपके रत जगे, आपकी सारी चीजों के पीछे जो सक्सेस थी ना, वो लोग जो आपके सामने थे, जो आपके मिशन के राही थे, वो कानहुम बुनयानुम मरसूस थे। आप इमारत बनाते हैं 100 साल को सामने रखकर। कहते हैं ना बुनियादें मजबूत रखो, बड़े लोग कहते थे पक्का घर बनाओ, और एक छत के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी छत, ये सोचते हैं ना लोग। अच्छा, अल्लाह के नबी ने ये नहीं किया। लिखे, यानी आप आंसू से रोएं, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई, और मैं ना समझा सकूं तो मैं रोऊं। पहली इमारत कब बनी मुसलमानों की, इस्लामी इमारत पहली कब बनी? कुबा, और उससे भी जरा बड़ी मस्जिद नबी। कब बनती है? नबुवत का कौन सा साल था? 14वां साल। 13 साल मक्का में कोई इमारत बनी, कोई बिल्डिंग बनी? दारे अरकम, एक सहाबी का घर, ये मुसलमानों का एक फर्स्ट इंस्टीट्यूट था, जिधर बैठते, जिधर कोई बातें होती, जिधर कोई मीटिंग्स होती, जिधर कोई प्लानिंग्स होती। 13 साल। देखिए, अबू बकर वहां मौजूद थे कि नहीं? अबू बकर के पास पैसा था मक्का में? था। आपको क्या पता, अबू बकर जब हिजरत कर रहे थे, सोने के टुकड़े थे, सुनी हुई बात आपने, पत्थरों की सूरत में सोना था। और जब इनके बाप जो नबीना थे, उनको खबर हुई अपनी पोती से कि अबू बकर चला गया, कहा अपने दोस्त के साथ चला गया, वो जिसका बड़ा नाम लेता है। जी दादा, हाय हाय, वो सोना तो नहीं साथ ले गया? बाप बूढ़े होते ना, वो सूरत हदीद में आप पढ़ेंगे कभी जिंदगी रही तो, के तकासरुम व तफाहरुम, वक्त के साथ दौलत और माल की मोहब्बत बढ़ती है, बुढ़े का दिल दो चीजों में कभी नहीं भरता, ना माल में ना उम्र में। तो कहा हाय, वो सोना भी ले गया? कहती पता नहीं अब्बा, एक थैला दे गए आपके लिए। अच्छा लो, किधर है? तो वो वाकई अबू बकर एक थैला दे गए थे। किसको दे गए होंगे भला, कौन सी बेटियां थी पास? हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा। और वो बूढ़ा दादा टटोल रहा थैला, कहता शुक्र है सोना छोड़ गए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सोना नहीं था। अबू बकर सोना ले गए और असली पत्थर डालकर अपने बाप की सेटिस्फेक्शन के लिए दे गए। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफा। उनको पता था उधर जरूरत पड़नी है। लोग ऐसी चीजें साथ ले के फिर रहे होते हैं कि जरूरत पड़ी तो उधर ही दे के जान छुड़ाएंगे। अल्लाह ये चीजें कबूल कर हमारी। आपने भी अपना सोना रखा हुआ अपने पास? और यकीन करें, बहुत ही पर्सनल बात है, मेरे पास अपनी जो पर्सनल चीज होती है मैं अपने साथ रखती हूँ, जहां जरूरत पड़ी ले लो। मेरे पास इस वक्त भी आपके लिए चीजें हैं। आप में से जिसने कोई निशानी समझ के लेना है ना, अपने बच्चों के लिए, कोई अपने लिए लेना है, बाद में बात कर लें किसी से, जो लेना है ले लें, क्योंकि मैंने उन चीजों को क्या करना है, मेरे लिए वो पत्थर है, अल्लाह ने दिया हुआ है, दे दे के नहीं खत्म होता। कहाँ देना है, आप बच्चों को दीजिए, हमारा बच्चा ये स्कूल है, हमारा बच्चा ये इस्लाम है। हाथ में लेके अबू बकर सोना फिरते थे कि ये सोना पकड़ो मेरे से लो और बाप को पत्थरों से लुझा दो। ये कुर्बानियां देनी पड़ती है। ये इस्लाम आपके मेरे दोगलेपन से इस्लाम आएगा? पता नहीं ये किसकी वजह से अभी चल रहा है। इसके पीछे बहुत अभी बड़े मुजाहिदों की जरूरत है, अभी बड़े मार्कों की जरूरत है। अल्लाह के नबी की असल कामयाबी 13 साल में अफराद थे कि जिनके दिल जुड़े हुए थे, बुनयानुम मरसूस। ये तो आप जब सुनेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। ये लकड़ी, ये बिल्डिंग, ये इमारतों को क्या करना है? निरी जिम्मेदारियां, अल्लाह ही जानता है। ये क्लोज सर्किट रूम है इसलिए बातें कर रही हूं आपसे। हमारे एडमिन्स गवाह हैं इस बात के, मुझे भी उनसे ही पता चलता है। मेरे साथ पर्सनल कोई भी बात करे तो मैं भी उनको अपने साथियों के रुख देती हूँ कि उधर जाइए, उधर से आइए, आप रॉन्ग वे से निकले हैं, ये एग्जिट है, आने वाला रास्ता नहीं है। हर शहर, हर मुल्क, जहाँ जहाँ भी, सारे तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन एक हैंडफुल जगह लोग चीज़ें लेके खड़े हैं हमारे पास कि ये रखिए इधर काम, इधर स्कूल्स को नूरुकुरान बनाए, सब्र करिए, इधर कौन आएगा, ये प्लॉट ले लें, ये घर ले लें, ये बिल्डिंग ले लें। अल्लाह जानता है मैं अगर इस जगह बैठकर झूठ बोलूँ तो, और मुबालगे कि अल्लाह मुझे तौफीक ना दे, दबाया हुआ है उनको, सब्र सब्र, पहले लोग बनेंगे तो। कहते अपने नाम लगाए, एक सिस्टर जिद में आ गई, प्लॉट उनका था, अभी उसके कुछ कर रही थी, उन्होंने हमारी एडमिन से झगड़ा किया, मैं मर गई तो क्या होगा, ये अपने नाम लगाए, आप अपने किसी बंदे के नाम लगा ले, मेरे नाम से इसको हटाए, ये वल्लाह ही सच बात है। जिनको समझ आ जाता है कि ये पैगाम क्या है, वो तो अपने विरसे लेके फिर रहे हैं, वो तो अपने हिस्से लेके फिरते हैं कि इसको लेकर कुरान के लिए लगाएं, तो ये इमारतें कुछ भी नहीं होती। और हम कभी उसको नहीं जिम्मेदारी में लेते कि जहां लोग नहीं है। अभी हमारे पांव इतने नहीं सीधे हुए, नूरुल कुरान अभी बड़ा छोटा है लेकिन इरादे बड़े बड़े हैं, हौसले बहुत बड़े हैं, कच्ची कच्ची ईंटें हैं लेकिन अल्लाह पक्की कर देता है। लोग तैयार हुए 13 साल में, इस्लाम जिसको आप आज इस्लाम समझ रहे हैं ना, अल्लाह का दी, उसकी बुनियादें बनी थी। आप कहते बिल्डिंग जल्दी बने जल्दी बने, ये इमारत तो 6 माह में खड़ी हो जाएगी, ये बिल्डिंग है कुछ भी नहीं। आप इस बिल्डिंग को बेच दें, आप इस बिल्डिंग को सजा लें, इसको मैंने क्या करना है। लोग 13 साल में इस्लाम के कमरे की वो ईंटें बनी थी जिसने बाद में बुनियानुम मरसूस की सूरत इख्तियार की थी। नबी को भी आता था सारा काम कर, और आज हम ये किए बगैर कर रहे हैं इसलिए नाकाम है। झगड़े, बड़ी बड़ी मस्जिदें, मैं आपकी नहीं मस्जिदों की बात कर रही, लेकिन आज मस्जिदें हैं लोग किधर हैं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। आज नमाजी नहीं है, मस्जिदें हैं, आज नमाजें हैं, नमाज की रूह नहीं है। आज नमाजें भी हैं, वजीफे भी हैं, हज भी हैं, उम्रे भी हैं, ये किधर है जिसको अल्लाह कह रहे इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ्फा। अल्लाह बता रहा है मुझे वो लोग पसंद है, माई फेवरेट इज आर दोज आर माई आर्मी, और वल्ला ही वो सिर्फ अल्लाह के नाम को बुलंद करने वाले हैं जो अल्लाह अकबर की पुकार लगाने वाले हैं। ये आयत 9 में आनी है बातें, ये अगले हफ्ते की कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ आपका माइंड वहां तक ले जा रही हूं क्योंकि हम समझे ही नहीं, तो मैं कैसे आपको ये आयत नंबर 4 पढ़ा दूं। हम बगैर प्लानिंग के काम कर रहे हैं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ के आपने क्या गुण कर लिया, आपने ये करना है, सलातो तस्बीह पढ़नी है, कितनी को पढ़े, सब्बह लिल्लाह ही माफी समावत, अल्लाह को जरूरत नहीं है। सिर्फ तस्बीहात से इस्लाम को गलबा नहीं मिला, अल्लाह के नबी ने ये रीत डाल दी। मस्जिद नबी की बुनियादें उस दिन पड़ी जिस दिन उसको चलाने वाले लोग तैयार थे, जब ठुकी हुई खपी हुई, जिसको कहते हैं कूट कूट कर, देखिए बुनियादों में जो ईंटें जाती कूटी जाती हैं, पत्थरों की तरह पीस पीस के जिनको डाला गया, वो ग्रोह तैयार हुआ तो फिर कहा चलो मस्जिद बनाते हैं। और मस्जिद की भी जगह आपको पता है कि 2 यतीम बच्चों से खरीदी, वरना तो हर फातिह जो है वो जाता और जमीनों पे कब्जे करता और मस्जिदें बना देता। अल्लाह ने कहा दीन की मस्जिदें भी लोगों से जबरदस्ती नहीं लोगे, ये तो लोग दे रहे हैं ना, जो मैंने आपको मिसाल दी है, आप क्यों मांगे लोगों से। एक दीनदार की तो कभी नजर नहीं होनी चाहिए, ना किसी के घर पे ना किसी के माल पे, वो जाने उनका काम है। तो जब सच्ची रूह आती है ना कुरान की, ये जो तालीम आप और मैं लेते देते हैं ना, ये असल में हमारे अंदर वो रूह डालती है कि ले ले के फिरते थे रातों को कि कोई ले ले हमसे माल। सदका लेकर गया एक बंदा और चोर को दे आया, सदका देकर गया और किसी जानिया को दे आया, वाकया तो आपने भी सुने हुए। ये वो दौर था, और उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर तक तो हाल ये हो गया कि आपके उमाल यानी जिनको जक़ात की वसूली के लिए भेजा जाता था, वो आकर कहते हैं कि या खलीफतुल मुस्लिमीन, ज़कात का माल इकट्ठा हो गया, दें किसको। कहा यतीमों को दो, कहते यतीमों को जरूरत नहीं, बेवाओं को दे दो, कहा जरूरत कोई नहीं, कहा जेल के कैदियों, कहते किसी को नहीं चाहिए, सब रजे हुए हैं, उसको 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 उधर, कहा सबके पास खुशहाली है, कोई नहीं लेने वाला, अच्छा जाओ इसका दाना खरीदो और पहाड़ों की चोटियों पे परिंदों को दाना डालो। ये इस्लाम की शान है। आज का इस्लाम तो इतना अजनबी, आप तो कहते हैं ना वो कपड़े हाल उलियों से हम अजनबी हो गए, भी हमारी शादियां अजनबी हैं, वो तो छोटी बात है, वो तो हम आम जैसे मीडियोकर्स की हैं। ओवरऑल इस्लाम अजनबी है, दीनदारों को नहीं पता इस्लाम क्या, हमें पता ही नहीं है। तो इमारत की बुनियाद में जब ऐसे लोग ढुक जाते हैं, आज 1450 साल पुरानी इमारत है, 1443 ईयर नबी को दुनिया से जाए हुए हुए हैं, उसमें फिर 13 साल ऐड कीजिए मक्की, क्योंकि हिजरी कैलेंडर, फिर मुझे बताइए कितने बने, 1456 साल पुरानी ये इमारत है, और आज भी बड़ी शान है इसकी। ये अलग बात है कि आज हमने इसकी खिड़कियां, बाजू, शीशे तोड़ताड़ दिए हैं। वो कहते हैं ना, बड़ी शान से निकला था ये दीन, लेकिन आज परेशान है। ये दीन बड़ा प्यारा है, हमें पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को भी नहीं पता, हमें खुद नहीं पता, वरना हम रोते हुए आते इधर, हमें पता ही नहीं हमने करना क्या और कैसे करना है। करना क्या ये पता है, तो ये नहीं पता कैसे करना है, और जिनको पता है कैसे करना है, बहुत ऑर्गेनाइज है, तो उनके पास रुको ही नहीं। तो लिखिए, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना, में अल्लाह ने जिहाद फी सबीलिल्लाह के बुलंदतरीन मुकाम यानी किताल फी सबीलिल्लाह का जिक्र किया है। चंद बातें लिख लीजिए कि जिहाद एक वसी इस्तलाह है, इज अ बिग टर्मिनोलॉजी दीन के लिए। नंबर एक लिखिए, जिद्दोजहद, मेहनत, कोशिश, दावत और तबलीग, सब जिहाद की सूरतें हैं। इसी तरह दीन की नशरोशात के लिए मेहनत करना, आज के दौर में सोशल मीडिया। नेक्स्ट लिखिए, 8th पॉइंट बताने लगी हूँ, लोगों से बातचीत करके उनको अपना हम ख्याल बनाना, यानी नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम की बारे में कॉन्वर्सेशंस के जरिए से बात बताना, लोगों के जहन बनाने, आपके हमसाए, आपकी मेड, आपके डॉकमैन जो पोस्टमैन आते हैं, जब भी मौका मिले एक जूस का कैन देकर उससे बातें कीजिए, ये सारी चीजें। फिर जो लोग इस दावत को कबूल करें, 9th नुक्ता लिखिए, उनको मुनज्जम करना, ऑर्गेनाइज्ड करना, और 10th पॉइंट क्या है कि इनकी फिर मुनासिब तरबियत का एहतमाम करना। ये 10 चीजें जिहाद फी सबीलिल्लाह में शामिल है। लेकिन इस तसादम और कशमकश का आखिरी मरहला, और जिसका नुक्ता है उरूज कह दे, वो किताल फी सबीलिल्लाह, ये आयत मैं तो बस दिल चाह रहा है कि चूम लो इस आयत को, मैं आपको समझाने के लिए पढ़ने लगी हूँ। इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना, बस इस लफ्ज़ युकातिलूना को बदलूंगी, इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना मुसल्लीन, अल्लाह को नमाजी प्यारे, हो सकता था ना, उर्दू में चलते हैं आसान हो जाएगा, अल्लाह को मोहब्बत है उन लोगों से जो नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह को मोहब्बत है उन लोगों से जो ज़कात देते हैं, अल्लाह को मोहब्बत है उन लोगों से जो रोजे रखते हैं, आ सकता है ना। और पूरा कुरान छान फटक कर देख लीजिए, लफ्ज़ युहिब के साथ क्या क्या चीज़ें आती है, और भी हैं, आपको दे दूँ होमवर्क, मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे, जाइए अल्लाह के महबूब ढूंढ कर लाइए कुरान और सुन्नत से, अल्लाह ने किन से मोहब्बत की बातें की हैं, तो आपको तो फिर एक अजीब सी बात समझ आएगी, और आप और मैं खुशकिस्मत है इस वक्त, ये कुरान की वो आयत है, पूरी लिस्ट है अल्लाह की महबूबों की, अल्लाह के महबूबों में दी बेस्ट थिंग अबाउट इस्लाम को अल्लाह अपने महबूब कहता है, ये है मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पर डालते हैं जो कमंद, ये सितारों पे कमंड डालने वाले जो कातिल उन तक पहुंचते हैं, जिनके गोल ही बड़े नहीं, वो तो छोटी चीजों में राजी हो गए, वो तो थोड़ी सी चीज लेके खुश बाश, सब पता, सब जान गए, बहुत कुछ कर लिया, बोर क्या करे, सब पढ़ लिया है, कुरान भी पढ़ लिया है, हदीस भी आ गई, तजवीद भी अच्छी हो गई, ग्रामर भी सुन ली, और क्या करें, चलो अब कुछ और करते, फिर कुछ और किसी और से सीखना शुरू हो जाएंगे, सारी जिंदगी पढ़ पढ़ के मोटे हो गए। कभी आपने आज तक ऐसा कोई डॉक्टर देखा जो एक दफा मेडिकल कॉलेज पूरा फारिग हो जाए, फिर दोबारा नश्तर कॉलेज से पढ़ा, किंग एडवर्ड में चला जाए, फिर वहां से निकले 5-6 साल पढ़ के, तो वो फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में, चलो मैं उनसे भी पढ़ लूं, आप मुझे बताएं वो सर्व कब करेगा, वो मरीजों को कब देखेगा। आज हमारा ये हाल है, हम अपने नसीब पर राजी कोई नहीं है, और इल्म के पहाड़ फूल फूल के कुप्पे, फिर हमारी कोई अकड़ तो देखे, हमारी टोन तो देखे, मुझे क्या क्या आता है, मेरे ये कोर्सेस सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, ये किधर है, वो किधर है, नहीं, ये मसला है, नहीं मुझे ये मसला है, मैं नहीं चल सकती, नहीं बस फातिमा जिना वालो आपने 4 साल मुझे पढ़ा दिए, बस पांचवा छठा साल मुझे नहीं आपसे करना, आपके साथ मुझे प्रॉब्लम है, फिर जीरो पे शुरू करेंगे, ये कर रहे हम, मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? हमारा गोल बड़ा नहीं है, शुक्र कीजिए आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया, लक्स डॉक्टर तो आपके लग गया, शौक पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए, आप दुनिया के बेकार से कॉलेज से भी सुपरस्टार बन के निकलेंगे अगर आपको मेहनत की आदत हुई। अच्छे अच्छे कॉलेजों से, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं बेकार स्टूडेंट निकलते, तो बेकार यूनिवर्सिटियों से अच्छे स्टूडेंट नहीं निकले, और मैं बेकार तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये जो सितारे हैं ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलखा और बाकी सारे, ये उस इंस्टीट्यूट के निकले हुए जिसकी छत भी टपकती थी, कोई ऑफिस नहीं था उधर, कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं था, इस तरह जैसे मैं आप बैठे पढ़े, मजे नवी में कोई ऐसे सेशंस होते थे, ये स्क्रीनें लगी होती थी, वल्लाही ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आज के दौर के तकाजे हैं, वो मोहब्बत, वो ईमान, अल्लाह के नबी जैसा उस्ताद जो अल्लाह से जमीन पे बैठकर बंदों को आसमानों से जोड़ देता था, ये चाहिए आज हमें, कि जो कल्ब को गर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे, ना आज या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, आज ना रूह तड़पती ना दिल गरमाया जाता, और हम बैठे हैं दीन इस्लाम की बातें करने के लिए, तो अल्लाह की पसंद नापसंद ये है, ये 10 काम करेंगे फिर उम्मीद रखिए कि आप अल्लाह के फेवरेटीज में शामिल होंगे, और इसमें जगह जगह रोड़े आएंगे, पत्थर आएंगे, हर्डल रेस है ये, वो यहीं से पलट जाए जिसे जहां हो प्यारी, इसमें तो आंसू भी आएंगे, इसमें सिसकियां भी हैं, इसमें हिचकियां भी हैं, इसमें मलामतें भी हैं, लेकिन वला तखाफून अल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम्हें अल्लाह के रस्ते के इस कामों की कशमकश में अपोजिशन सहनी पड़े, जब तुम्हें फ्रिक्शन का सामना करना पड़े, और तुम्हारी ये कोशिशें जिहाद बिन नफ से ऊपर उठते उठते किताल फी सबीलिल्लाह में पहुंच जाएं, तो फिर एक काम याद रखना, सफन, सफे बना लेना, अकेली चीज उड़ जाती, एक ईंट पड़ी हो तो फक से उड़ जाएगी, बाकी ईंटों के बीच में अल्फी से जुड़ती है ना, तो वो इमारत बन जाती है। एक मैकेनिक था, तो वो गाड़ी में कोई पुर्जा सेट करना चाह रहा था, और वो पुर्जा फिट नहीं हो रहा था, आप कहते मैकेनिकों के पास नए पुराने पुर्जे होते हैं, चलो अभी उसकी गाड़ी का उसमें लगा दो, उसका उसके लगा दो, तो वो पुर्जा उसके कहीं इंजन के साथ जोड़ना चाह रहा था, और वो जुड़ नहीं रहा था, फिट नहीं हो रहा था, एक कोशिश की फिर दूसरी की, आखिर कहने लगा, अब आप जुमला लिख लें, बेकार लोहे के भाव बिकेगा, मैं तुझे कह रहा हूं इस गाड़ी में लग जा, इस गाड़ी में लगेगा तो लाखों का हो जाएगा, गाड़ी की कीमत पुर्जों की कीमत है ना, और अगर इसमें नहीं लगेगा तो कोई आएगा कबाड़िया और तुझे लोहे के भाव बिक जाएगा, ये है कान्ना मुंजानु मरसूस, दुआ करें इस्लाम की गाड़ी का एक पुर्जा बन के एक इज्तमाईयत के काम में कुछ काम कर जाएं। अकेला बंदा नुमाया बहुत होता है लेकिन खतरों में बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई भी आए तो सबसे ज्यादा खतरे में इस वक्त कौन है, मैं, क्योंकि मैं अकेली हूं, मैं जरा से एक स्टेप ऊंची हूं और आप सारे अंदर हैं, मैं इधर हाथ करूंगी ना आपको दिखेगा, मैं यूं करूंगी आपको दिखेगा, आप में से किसी ने 10 दफा किया होगा, टू बी प्रोमिनेंट, अलग रहना, ये जो बुनियानु मरसूस का आपको मैं खुलासा दे रही हूं ना, सारी ईंटें एक जैसी, कोई इमारत जो मजबूत बनती है ना, सारी ईंटें एक जैसी, लुक लाइक सेम, वो माथे पे लग जाएं, वो बुनियादों में लग जाएं, वो खिड़कियों के चौकटे बन जाएं, सब अपनी बातें खत्म करके जब एक बिल्डिंग का हिस्सा बनते हैं, और यही है अल्लाह के नबी का कमाल, अबू बकर और उमर फर्क थे, उस्मान और अली फर्क थे, तलहा और इसी अब्दुलरहमान फर्क थे, पर कभी किसी ने एक दूसरे को जाकर यूं नहीं कहा कि तू क्या और मैं क्या हूं, ये जाएगा तो फिर मैं आगे आऊंगा, ये नहीं था, नबी ने मसे नबी की इमारत जो बनाई थी वो भी तो बेचारी छत की टूटी हुई थी ना, क्या था उसमें, खजूर की छाल, एक दिन बारिश बरसती और 3 दिन तक मट्टी गीली रहती, कि ये माथे पे और मुंह पे सजदों के दौरान मट्टी के निशान पड़ जाते थे, अल्लाह के नबी के दौर में ऐसी मस्जिद थी, और वहां से हीरे मोती निकले, आज की बड़ी बड़ी जामियात और यूनिवर्सिटीज में से क्या निकल रहा है, और आज की तालीमी इदारे जिधर आप दिन रात बच्चों को भेजते, उधर से क्या निकल रहा है, एथियज्म निकल रहा है, एग्नोस्टिज्म निकल रहा है, बेकारियत निकल रही है, डिप्रेशन ज्यादा लोग निकल रहे हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने तुम्हें बता दिया शुरू में ही। देखिए इस आयत को अभी इसलिए बता रही हूं कि शुरू में ही तुम्हें पता लग जाए कि ये रास्ता जा किधर रहा है। जिहाद फी सबीलिल्लाह के जिस रास्ते पर तुमने कदम धरे हैं उसकी आखिरी मंजिल कौन सी है? युकातिलूना फी सबीली, किताल, किताल है। जहां तक किताल का दर्जा नहीं आता उससे पहले इस्लाम का काम पूरा नहीं होता। आज पूरी दुनिया में एक भी पूरा इस्लामिक मुल्क नहीं, पार्शल मुस्लिम्स है। ये जो आप 120 और 125 के करीब मुसलमान मुल्कों के नाम लेते हैं ना, आप लिखिए दे आर इस्लाम फ्रेंडली कंट्रीज, यूजर फ्रेंडली लिखते हैं ना, ये दे आर नॉट इस्लामिक कंट्रीज। किसी ने एक चीज इस्लाम की लगा ली, किसी ने दूसरी लगा, पूरा इस्लाम किधर है? सऊदीया में भी नहीं है पूरा, उधर इस्लामिक सजाएं हैं नाफिस, तो बाकी चीजें नहीं है। पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का लफ्ज लिखा हुआ है तो अदलिया कोई नहीं है, है ना। लिखिए आज के मुसलमान मुल्क जो हैं ये इस्लाम फ्रेंडली कंट्रीज हैं। हाँ, वहां जाके आपके लिए इजी हो जाता है, इस्लाम फ्रेंडली, फ्रेंडली माहौल है। उसके बरक्स अब जब नॉन मुस्लिम मुल्कों में आते हैं तो शायद आपको थोड़ी सी अजनबियत लगती हो कि अब यहां हम इस्लाम की क्या बात करें। पूरी दुनिया में अमन तब आएगा, और ये क्यामत से पहले आना है। हदीस में आता है क्यामत के करीब कच्चे घर में इस्लाम होगा। पूरी दुनिया में इस्लाम कैसे आएगा कि एक सजदा लोगों को दुनिया व माफिया से प्यारा हो जाएगा। और ये कब होगा? जब इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और आप और मैं इस रास्ते की बोगियां हैं। ये दुआ कीजिए कि इस्लाम की गाड़ी के अंदर हो, मुंह करके दूसरी तरफ ना बैठे हो। आज के दौर में जिसको मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बनने का मौका मिल गया, और वो युकातिलूना फी सबीलिल्लाह तक अगर किसी का बेटा और भाई जाके शहीद हो भी गया ना, तो मुबारक उन माओं को, मुबारक उन बहनों को, मुबारक उन बेटों को। ये तो पूरा एक सिस्टम है पढ़ने वाला, हमने अभी इसको पूरा समझा ही नहीं है। तो जरूरत है इस बात की कि इन बातों को समझते वक्त आप इस चीज को अपने ऊपर लीजिए।